ठीक कथा कहता है तो
अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ थोड़ी ठीक है, कथा रस भरी है, बने व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, कुछ शब्द अच्छे नहीं बोलता, वो श और स और स में सब गोलमाल कर देता है। माने अब इसमें कथा सुनने आए हैं ना, वो सड़क की स, साला की स, षटकोण की स, ये सब तीनों स एक समान ही बोलता है। अब अगर यही लेकर के हम कथा सुनने के लिए जाएं तब तो बड़ी मुश्किल है, फिर वहां पर कथा का रस ही नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर संकेत जो दिया है, कहते हैं कि मुनि ने तो बहुत सुंदर कथा कही, राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, महेश को तो बड़ा आनंद हो गया। परंतु वहां पर सती जी नहीं दिखाई देती, कथा में नहीं है, उनको लगा कि अब मैं एक कनिष्ठ की क्यों श्रोता बनूं, कथा तो वे कह रहे हैं अगस्त्य जी, और अगस्त्य जी ने मेरी पूजा की, उन्होंने जान समझ करके ही मेरी पूजा की, मैं बड़ी हूं, कथा में नहीं बैठूंगी। तो वे तो नहीं सुनती हैं, अब ये कथा सुनते हैं और परम सुख मानते हैं और फिर उसके बाद विदा लेते हैं। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, कहा कि प्रभु अब आप मुझे विदा दीजिए, कथा सुनी, धन्य हैं आप, कथा सुना करके आपने मुझे भी धन्य कर दिया है, ऐसा कहकर के विदा मांगते हैं। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, अब वो तो चल तो रही, सती जी भी कहा, सती जी भी वापस चल रही है, पर अब सती जी लिए दूसरा संबोधन गोस्वामी जी देते हैं। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अभी दक्ष की कन्या जा रही है, अभी विश्वास की पत्नी अभी नहीं है, वह दक्ष की कन्या है, अपने हृदय में बड़ा संशय लेकर के जा रही है, बड़ा गुमान लेकर जा रही है, अभिमान लेकर के जा रही है, इसलिए दक्ष की कन्या है। दक्ष बड़ा अभिमानी था, आप तो जानते हैं, मानो यह अभिमान का स्वभाव ही उसने पा लिया। तो इसीलिए सती जी के साथ समस्या यह है कि जब अपने को दक्ष कन्या मानती हैं तो संशय आता है, उनमें अभिमान आता है, और जब वे अपने को भगवान शंकर की पत्नी मानती हैं तो उनके भीतर में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मानो जब हमारी बुद्धि वृत्ति विश्वास के पीछे चले तो वह जिज्ञासा बन जाती है। तो जिज्ञासा की आवश्यकता तो है, पर अभिमान वृत्ति की, संशय वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। और जब वे जा रहे हैं अपने भवन की ओर भगवान शंकर और सती जी, तो उसी समय एक कौतुक होता है, बत त्रेता युग की बात, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो उसी समय क्या हुआ था, जब ये वापस जा रहे हैं, तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राजोदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। प्रभु जा रहे हैं भाई लक्ष्मण को लेकर के साथ में, वहां पर दंडक वन में पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए राजपाट सब छोड़ करके जाते हैं। तो वहां पर लिखते हैं कि सीता जी का तब अपहरण हो गया है, और अपहरण होने के कारण वे अत्यंत विकल हैं, लक्ष्मण जी भी बड़े उदास हैं, पर भगवान श्री राम तो विकल हैं, और कैसे विकल हैं, विरह विकल नरैव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कि अत्यंत विरही के समान विकल हैं। जैसे सामान्य विरही पुरुष, संसार का पुरुष अपनी पत्नी के विरह में कलपता और रोता है, इसी प्रकार भगवान राम नर के समान विरही अपना भाव प्रदर्शित करते हैं, और भाई लक्ष्मण के साथ उस जंगल में, उस विपिन में अपनी पत्नी सीता जी को खोजते हुए फिरते हैं। और ऐसे समय में भगवान शंकर ऊपर से जा रहे हैं आकाश मार्ग से कैलाश धाम की ओर वापस सती जी को लेकर के, और वे देखते हैं ऊपर से, और ऊपर से देख करके उन्होंने क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, ऊपर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जय जग पावन, यह कहकर के उन्होंने प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तब, अब जब ऐसा प्रणाम किया, और वहां पर गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, मन में उठा विचार सती जी के, जब शंकर जी ने प्रणाम किया जय सच्चिदानंद जय जग पावन ऐसा कहकर के, तो सती जी के मन में से उठा, और वह विचार करती हैं, क्या करती हैं, अरे शंकर जगत बंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अरे ये तो हमारे शंकर जी ही तो साक्षात भगवान हैं, जगदीश हैं, सारा जगत इनकी वंदना करता है, सुर भी नर भी मुनि भी ये सब उनके समक्ष अपना सिर नवाते हैं। और इन्होंने क्या किया, जो जगत वन्य है जगदीश है तिन्ह नृपसुतहिं कीन्ह परनामा कही सच्चिदानंद परधामा। ये क्या विचित्र बात है कि ऐसे जो जगत वंद्य जगदीश्वर शिवजी हैं उन्होंने नृप के सुतों को प्रणाम किया और क्या कहकर जय सच्चिदानंद परिधामा। ये सच्चिदानंद यही परम धाम है। ये तो रो रहे हैं सामान्य एक मनुष्य की तरह, और कैसे हैं इतने रो रहे हैं और इनको इन्होंने प्रणाम किया। पूछती हैं कहती हैं रुक नहीं पाती, वह जो संशय वृत्ति है अपने को रोक नहीं पाती है और वे कहीं उठती हैं। आपने उनको सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया, शंकर जी ने कहा हाँ उनको किया, वे जो रो रहे हैं हाँ वे जो रो रहे हैं उन्हीं को मैंने सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। तो रोने वाला या ब्रह्म क्या रोने वाला बन सकता है, क्या ब्रह्म इसी प्रकार रुदन करता है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी होई नर जाहिन जानत वेद। क्या अद्भुत बात पूछती है वो, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी होई नर जाहिन जानत वेद। जिसको वेद भी नहीं जानते, नेति नेति कहकर के जिसका बखान ये वेद और शास्त्र करते हैं, अरे क्या वही विरज अज समस्त मानो भेदों से रहित ऐसा ब्रह्म मनुष्य की देह धारण करके अवतरित हो सकता है। अब भगवान शंकर क्या करें, उन्होंने समझाने की कोशिश की हाँ भाई इन्हीं को मैं ब्रह्म मानता हूं, अब ये ब्रह्म आए हुए हैं, ये जो ब्रह्म है लीला करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का रूप धारण किया है, मैं इन्हीं को ब्रह्म मानता हूं। बहुत समझाया तरह तरह से, कहा हाँ यही ब्रह्म है जिनको मैंने प्रणाम किया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहिं सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। कितना समझाया, वही साक्षात ब्रह्म है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहिं, ये योगी सिद्ध संतत हरदम अपने विमल मन के द्वारा जिनका सतत ध्यान करते रहते हैं, और पुराणों ने शास्त्रों ने आगम ने निगम ने वेदों ने नेति नेति कह करके जिनका बखान किया है, सोई रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अरे वही माया के पति हैं, वही सब कुछ हैं, बहुत कुछ, और वे ही अवतरित हुए हैं भगत हित निज तंत्र अपने तंत्र से अपनी इच्छा से, वे अपनी इच्छा से मानो भक्त की कामना को स्वीकार करके वे अपनी इच्छा से ही अवतरित हुए हैं। वे कहते हैं कि निज तंत्र मानो उनका बस है माया पर, और वे अवतरित हुए हैं भक्तों के कल्याण के लिए। तरह तरह से समझाया, परंतु कहते हैं लागुन उर उपदेश जदपि कहे उसीम बार बहु बोले बिहसि महेशु हरि माया बलु जानि जिय। बहुत समझाया नहीं समझी, तर्क करती रही, कन्या हो गई तब तो कुतर्क आएगा ही, संशय जब जीवन में आ गया तो कुतर्क उसके साथ साथ चलेगा। कितना समझाया भगवान शंकर ने, पर सती जी मानती नहीं, एक के बाद एक तर्क करती हैं। तो शंकर जी ने खींच करके कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले हूं। जाओ तुमको इतना संशय, जाओ परीक्षा लो, मेरा सिर क्यों खा रही हो, परीक्षा लेकर के देख लो, तुम भी तो समर्थ हो, परीक्षा ले लो, तुम्हारी परीक्षा में पास हो गए तो मान लेना, और ना पास हो गए तो ठीक है, जैसा तुम्हारा भाव वैसा ही सही। सती जी के मन में इच्छा हो गई कि हाँ परीक्षा तो ले लें। क्यों इच्छा हो गई, कहा कि आप भी चलिए ना साथ, कहती है शंकर जी से कि आप भी साथ चलिए। तो शंकर जी ने देखा कि मैंने इतना समझाया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सती जी जा रही है परीक्षा करने के लिए, अरे यह जानती नहीं है कि ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है। वह जिज्ञासा का विषय भले ही है पर ईश्वर कभी परीक्षा का विषय नहीं है। ईश्वर की कोई परीक्षा कर सका है? अगर जानना है तो जिज्ञासा की वृत्ति लेकर के ईश्वर के स्वरूप को जानने का प्रयास किया जा सकता है, पर ईश्वर की परीक्षा लेकर के उनको कभी जाना जा सकता है? यह मानो संकेत देते हैं, परंतु फिर भी मैं नहीं मानती सती जी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, देखो मैं ईश्वर को परीक्षा का विषय नहीं मानता, वे जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं, परीक्षा के विषय नहीं है, और तुम परीक्षा लेना चाहती हो। फिर भी कहा, नहीं आप साथ चलिए, मुझे सुविधा हो जाएगी, मैं भी जरा परीक्षा करके देख ही लूं। मानती नहीं। शंकर जी ने तब कहा कि बाबा अब तुम जाती हो तो जाओ ना, और मैं आप क्या करेंगे फिर? मैं जरा यहाँ पर बैठता हूँ। कहाँ बैठेंगे आप? तब लगी बैठ रहूं बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। जब तक तुम परीक्षा करके लौट नहीं आती हो, मैं यहीं पर वट वृक्ष की छाया में विश्राम करता हूँ, तुम जाओ। बड़ा सांकेतिक यहाँ पर मानो बात है। सांकेतिक तथ्य यह है कि यहाँ पर गोस्वामी जी जो वट वृक्ष लिखते हैं, वट की छाया या वट क्या है वे लिखेंगे, कहीं उन्होंने संकेत दिया है। रामचरितमानस में जहां पर वट आया है तो प्रधानता से उसका अर्थ उन्होंने विश्वास किया है, विश्वास का प्रतीक। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। तो यह जो वट है यह विश्वास का प्रतीक है। तो शंकर जी कहते हैं अब संशय तो तुम्हें उत्पन्न हुआ है, परीक्षा करने तो तुम जा रही हो, तो तुम जाओ धूप में चली जाओ, परीक्षा करो, और परीक्षा जो करते हैं तो उसमें जो कष्ट होता है वह कष्ट भी तुम भोग करो। अब मैं नाहक क्यों जाऊं? अरे मेरा तो विश्वास पक्का ही है कि वे ब्रह्म हैं, तो मैं जरा विश्वास की छाया में आनंद से रहता हूं और तुम परीक्षा करके लौट आओ, ठीक है? मैं यहीं पर विश्वास की छाया में, वट की छाया में मैं हूं। तब भी नहीं मानी कि शंकर जी साथ नहीं आए। सती जी को तब तो सोचना था कि मैं अकेली अब कैसे जाऊंगी, ठीक है, कहना था कि मुझे संशय तो है, आपकी बात पर विश्वास तो नहीं होता है, मेरी इच्छा तो है परीक्षा लेने की, पर जब आप मेरे साथ नहीं जाते तब मैं भी नहीं जाती। शायद शंकर जी ने यही अपेक्षा की थी कि सती जी नहीं जाएंगी अकेली जान करके, पर नहीं, कितना बड़ा संशय है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप यहीं रहिएगा भला, और मैं आती हूं लौट करके। चली, अब जब चल रही हैं तो ऐसा वो सोचती हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किस प्रकार से मैं उनकी परीक्षा लूं। मन में बात चल रही है तो ऐसा लगा, अच्छा ऐसा क्यों ना किया जाए। कैसा? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता करी रूप। सोचा कि अभी तो सीता जी का हरण हो गया है, दोनों भाई सीता जी को खोज रहे हैं, तो मैं जरा आगे निकल जाऊं और सीता जी का रूप लेकर के मैं नीचे जंगल में चली जाऊं, और जो ही वे आएंगे मुझे सामने खड़ा देखेंगे, तो अगर इन्होंने नहीं पहचाना और सीता जी समझ ही लिया मुझे, तब तो समझ लूंगी अरे ये तो राजकुमार है। बस यह सबसे सुंदर परीक्षा है, और इसीलिए वे सीता जी का रूप लेती हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेही, जही आवत नर भूप। सामने चली गई जिस रास्ते से प्रभु जा रहे थे, सीता जी का रूप लेकर के दूर से श्री राम ने देखा। लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो बोला ये कैसी बात है। लक्ष्मण जी भी देख करके चकित हो गए कि सीता जी आ गई हैं यहां पर और हम लोग खोज रहे हैं। जब पास आए प्रभु, प्रभु ने क्या किया? जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। सती जी के पास आ गए प्रभु, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं राम हूं, मेरे पिता श्री दशरथ हैं, अयोध्या के राजा हैं, और इस प्रकार अपना परिचय देकर के, भाई का परिचय देकर के दोनों प्रणाम करते हैं। अच्छा प्रणाम किया, और सती जी तो सोच रही मैं तो सीता जी का रूप बना करके खड़ी हूं, और फिर एक प्रश्न पूछते हैं, कहउ बहोरी कहां वृष केतु। आप अकेली कहां, भगवान शंकर कहां है, शंकर जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहे वो बफोनी कहां बिशके तू विपिन अकेली फिरहु कहीं है तू। इस विपिन में आप अकेली कहां फिर रही हैं? और यह विपिन क्या है? विपिन है संशय विपिन अनल सुर रंजन। यह रामचरित मानस का यह दूसरा संकेत कि गोस्वामी जी विपिन की तुलना संशय से करते हैं। यह संशय का जंगल है, संशय का अरण्य है, मनुष्य जहां भूल जाता है। और मानो यह व्यंग यहां पर प्रभु करते हैं कि आपका साथ विश्वास के साथ है, पर विश्वास को छोड़कर कि संशय के जंगल में अकेली कहां फिर रही है। आपका कितना बड़ा भाग्य कि विश्वास को आपने पति के रूप में पाया, पर कितना बड़ा दुर्भाग्य कि आप विश्वास को अकेली छोड़कर के संशय के जंगल में भटक रही हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कहे वो बहोरी कहां वृष केतु विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। और तब काटो तो खून नहीं। सती जी अब क्या करेंगे? सती जी तो एकदम वैसे ही उल्टे पैर चली जाती हैं। और आप पढ़ते हैं वह बाकी कथा। वह जाती हैं और कहा भगवान शंकर ने परीक्षा ले ली? कहा नहीं, ऐसी कोई परीक्षा तो नहीं ली, मैंने भी उनको देखा तो आपके ही समान हाथ जोड़ करके मैंने भी उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी ने सोचा कि मेरे ही समान हाथ जोड़ करके प्रणाम करने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, कोई कुछ तो हुआ जरूर है। और उन्होंने ध्यान धरा और योग के सहारे सब कुछ जान लिया। और जब शंकर जी ने देखा कि सती जी ने उनकी उपास्य देवी सीता जी का रूप धरा है, तो उन्हें लगा कि अब मैं सती जी को पत्नी के रूप में कैसे ग्रहण कर सकता हूं, जिन्होंने मेरी उपास्य देवी माता जानकी जी का रूप धर लिया। भले ही उन्होंने कौतुक में धरा हो, पर जहां पर सीता जी के रूप की अभिव्यक्ति एक बार हो गई है, उस शरीर को मैं अपनी पत्नी के रूप में कैसे मान सकता हूं? अब तो इसका परित्याग करना ही पड़ेगा। या जब मन में वे विचार लाकर के उसे निश्चय में बदलते हैं, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि आपने ठीक ही विचार किया है। और तब सती जी पूछती है कि आपने क्या विचार किया? तब शंकर जी कहते नहीं, वैसी कोई बात नहीं, अब क्या बताएंगे? क्या तुमने भी बात बताई नहीं हमें, तो चलो हम भी यह बात अब क्या बताएं। गंभीर होकर के चले गए। और हम पढ़ते हैं कि वे सती जी के परित्याग का संकल्प ले लेते हैं। और सती जी दक्ष के यज्ञ में अपने को भस्म करके वे नष्ट कर देती हैं। और फिर गिरिराज कुमारी पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। और फिर शंकर जी को पाने के लिए तपस्या करती हैं। शंकर जी से उनका विवाह होता है। और आज पार्वती जी के हृदय में वही संशय है श्री राम के ब्रह्मत्व के संबंध में, गया नहीं। मानो वह जड़ से नष्ट नहीं हुआ था संशय, वही व्यक्त होता है। और आज भगवान शंकर इस ज्ञान घाट के वक्ता हैं, पार्वती जी श्रोता के रूप में विद्यमान हैं। और भगवान शंकर भिन्न भिन्न मानो दृष्टांत देकर के प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हुए पार्वती जी के संशय का निरसन करते हैं। यह ज्ञान का घाट है। कहा संशय ने, वाह गोस्वामी जी, आपने तो बड़ा सुंदर यह बांधा है, यह सरोवर का यह जो इतना सुंदर ताना बाना बुना है। पर जहां तक मुझे ख्याल है, आपने जब कथा शुरू की थी बताया था गोस्वामी जी, आपने कहा था इसमें चार घाट हैं, चार घाट, तो आपका तो चौथा घाट कहां गया? वो तो पता ही नहीं चल रहा है। कहा ठीक है, बताता हूं। चौथा घाट कौन सा? गोस्वामी का, भाई वो मेरा अपना घाट है। अच्छा, आपने कोई एक विशेष घाट बना लिया, क्या बात है? उस घाट में क्या है? आपको ये ज्ञान कर्म और भक्ति के ये घाट जब बना दिए, तो आपको क्या यहाँ पर यहाँ से कुछ जाने का रास्ता नहीं मिला? अरे संसार में ये तीन ही तो पथ प्रशस्त हैं, माने गए हैं, तीन राजमार्ग हैं भगवान को पाने के। एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है, तीसरा कर्म मार्ग है। अब ये जो तीन राजमार्ग हैं, उनको छोड़ करके आपने चौथा घाट बना लिया, क्या बात है? आपके मन में यह सांप्रदायिक वृत्ति कैसे आ गई कि इन तीनों से हट करके मैं अपना अलग घाट बनाऊं? आजकल मनुष्य जो प्रदर्शनकारी होता है, वह अपने आप को अधिक महत्व देने की आकांक्षा से अपना कुछ एक नवीन कुछ खड़ा करता है। आपने भी वैसा कुछ खड़ा किया। कहा भैया इतना सब दोषारोपण न करो, बात असल में यह थी कि तुमने जो तीन राजमार्ग कहे वो तो बिल्कुल ठीक थे और मैं उनके वहां पर जाना भी चाहता था। अरे पर वे लोग मुझे स्वीकार करें तब मैं गया, ऐसी बात नहीं। मैं कर्म के घाट में गया, हकाल दिया उन लोगों ने, ज्ञान के घाट में गया, हकाल दिया, तब मैं क्या करूं बोलो आखिर में? अच्छा, आपको हकाल दिया? करमठ कठमलिया कहें, मैं गया था कर्म के घाट में गया। अब भाई अब मैं जरा काट की माला, मैं तो जप करता हूं, भजन पूजन करता हूं, तो भगवान के नाम का जाप कर रहा था, तो जो ही कर्म के घाट में गया, मुझसे पूछा यह देखा उन्होंने चंदन फंदन और ये माला, क्यों क्या बात है, कैसे आए हो? कहा महाराज आपके घाट का सदस्य बनने आया हूं। तुम काठ की माला जपने वाले कर्म के रहस्य को समझ सकते हो? अरे यहाँ पर तो कर्म की बड़ी जटिलता है, यह तो यज्ञ इत्यादि जो कर्म के यज्ञ याग हैं, यह समझने की पात्रता तुम में। काठ की माला जपने वाला क्या कभी कर्म के रहस्य को समझ सकता है? हकाल दिया, भैया मैं क्या करूं, मैं तो गया था, पर कर्मठ ने कठमल्या कह दिया। अरे यह कठमल्ला है, काठ की माला लेकर के जपता है। फिर संशय ने पूछा, फिर क्या करूं? ज्ञान के घाट में गया, ज्ञान के घाट में गया तो उन्होंने पूछा कि कहो कैसे आए? उनका महाराज सुना है कि यहां पर ज्ञान के द्वारा स्वरूप की अनुभूति की जाती है। हाँ की जाती है, तो तुम कैसे आए? कहा महाराज मुझे भी एक सदस्य बना लिए। तुम रोने वाले, आंखों से आंसू बहाने वाले यहां पर इस प्रकार? अरे तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो, उन्होंने वहां से भी मुझे भगा दिया। करमठ कछमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन। ज्ञानियों ने कहा तुम ज्ञान विहीन हो, तुम क्या यहां पर आओगे, तुम्हें क्या मिलेगा, चलो जाओ यहां से, हटो, ये तुम्हारा घाट नहीं है। अच्छा तो आप अगर रो ही रहे थे गोस्वामी जी, तो वो तो भक्ति का घाट ही आपके लिए अच्छा होता, वो तो सब रोने वालों का घाट है ना। हाँ भैया रोने वालों का तो घाट है, क्या वहां से भी हकाल दिया? नहीं हकाला तो नहीं, मैं फिर भक्ति के घाट में गया, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने ऐसा विचित्र दृश्य देखा, एक से एक बढ़कर के भक्त हैं, प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए ढेरों आंसू बहाते हुए उन्मत्त के समान हुए जा रहे हैं। तब मैंने अपने मन से कहा, रे तुलसी तू तो इनकी भक्ति के पासंग में भी नहीं बैठेगा और तू यहां सदस्य बनने चला है, तो मैंने अपनी अयोग्यता का ख्याल करके अपने को वहां से वापस ले गया। उन्होंने हकाला नहीं, पर मैंने ही समझा कि मैं इस भक्ति के घाट के लायक नहीं हूं। अच्छा तो तीनों घाट से तो चले गए, तो फिर पाया कि नहीं पाया उस तत्व को? हाँ कुछ पा तो लिया ऐसा लगता है। फिर कैसे पाया? वही जो मैंने कहा तुमसे, वही जो मेरा चौथा घाट इसीलिए बनाया भाई, कोई सांप्रदायिक आग्रह नहीं था, कोई प्रदर्शन की वृत्ति नहीं थी, कोई मैं नया पंथ खड़ा करना नहीं चाहता था, बल्कि तीनों घाट मुझे ठीक नहीं मालूम पड़े, अनुकूल नहीं जचे। वहां कर्म के घाट से हकाल दिया गया, ज्ञान के घाट से हकाल दिया गया, और भक्ति के घाट में गया तो मैंने अपने को ही लायक नहीं पाया। तो मैंने अपने मन से कहा, चल तुलसी अपना एक अलग घाट बना लें, हम सरीखे लोग जो कर्म और ज्ञान के द्वारा दुकार दिए जाते हैं और जो भक्ति की अपनी पात्रता नहीं समझते, तो उनके लिए चल यह घाट बनेगा। अच्छा यह चौथा घाट कौन सा है? कहा भैया यह मेरा दीनता का घाट है। यह तुलसी का जो चौथा घाट है वह दीनता का घाट है। तो उसमें क्या, दीनता के घाट में आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारिन थोरी। यह दीनता का घाट, विनय का घाट, यहां पर आरती है, विनय है, दीनता है। अच्छा तुलसी जी आपने कहा यह दीनता है, तो जरा समझाइए आपका जो दीनता का घाट है, तो आपने श्री राम के चरित्र रूपी जल से क्या लिया, आपके घात में व्यक्ति क्या लेता है? क्या मतलब, तुलसी ने पूछा। अरे मतलब यह है तुलसी जी कि जैसे कर्म के घाट पर जो व्यक्ति जाता है तो वह श्री राम के चरित्र रूपी जल से स्वच्छता लेता है, आपने ही बताया ना। हाँ जैसे व्यक्ति उस भक्ति के घाट में जाता है तो वहां पर जाकर के श्री राम के चरित्र रूपी जल से वह मिठास लेता है, शीतलता लेता है, ठीक बात है ना, आपकी बात मैंने ठीक समझी ना। हाँ हाँ ठीक है। ज्ञान के घाट में जाकर के श्री राम के चरित्र रूपी जल से गहराई लेता है, तो आपके घाट में जाकर के श्री राम के चरित्र रूपी जल से वह क्या लेगा, यही मैं पूछ रहा हूं। भैया वो लेगा नहीं, वो देगा। अरे बड़ी विचित्र बात है, लेगा नहीं देगा, कि सब घाटों में जाकर के मनुष्य लेगा और आपके घाट में जाकर के देगा, तो आपने क्या दिया? बताता हूं मैंने क्या दिया। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आपका ये जो चरित्र रूपी जल है ना, इसमें सारे गुण सारे तत्व मौजूद हैं प्रभु, वह स्वच्छ है, वह शीतल है, वह मधुर है, उसमें गहराई है, ये सारे गुण उसमें मौजूद हैं प्रभु, पर उसमें एक दोष है। प्रभु ने कहा कौन सा दोष है तुलसी? कहा महाराज का जल जरा भारी है, भारी है। अब भारी अगर जल हो तो कितना भी स्वच्छ हो कोई पीने की इच्छा नहीं करता। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे कुएं का जल भाली भरे स्वच्छ हो, आप कहेंगे डॉक्टर साहब बड़ा मधुर है, बड़ा शीतल है, कुएं का जल पीने से ऐसा लगता है मानो उसमें शक्कर घुली हुई है, अरे भले हो, भले मानुष पर यह जो तुम पेट के विकार से पीड़ित हो उसी के कारण हो, और तुम्हारे कुएं का जल बड़ा भारी है, जल्दी पचता नहीं है, इसीलिए तुम बदहजमी के शिकार होते हो। तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आपके इस जल में, चरित्र रूपी जल में सारे गुण तो हैं, पर एक कमी है कि वह बड़ा भारी है। क्या करूं तुलसी, अब भारी है तो है, अब जैसा है सो है। कहा महाराज मैं एक उपाय बताता हूं उसको सर्वांग संपूर्ण कर देने के लिए। बोलो। देखिए महाराज, आपके चरित्र रूपी जल में सारे गुण हैं। मैंने कहा कि एक दोष है कि वह भारी है, और मेरे जीवन में हल्कापन ही हल्कापन है। ऐसा क्यों नहीं करते, आप मेरा हल्कापन ले लीजिए, अपने जल के साथ मिला लीजिए, ताकि आपका जल भी हल्का हो जाएगा। चरित्र के लिए हल्कापन खराब है, जल के लिए हल्कापन गुण है। तो तुलसी कहते हैं कि मैंने अपना हल्कापन, अपने दोष प्रभु के चरणों में सौंप दिए, और मेरे दोष, मेरा हल्कापन प्रभु के चरित्र के साथ मिलकर के इतना बड़ा मानो गुणावह हो गया। मानो यह तुलसी कहते हैं कि मेरे घाट में आकर के लेना नहीं पड़ता, देना पड़ता है। अपना हल्कापन दे दो, अपने दोष दे दो, अपनी त्रुटियां दे दो, यह मेरा है, जानते हो। अब संशयी सचमुच में बड़ा प्रभावित हो गया। इतने समय से पूछ पूछ करके वह परेशान कर रहा था। कहा वाह तुलसी जी, यह तो बहुत सुंदर बात आपने कही, तो इसकी विशेषता थोड़ी सी और बता दीजिए। यह तो आपने बहुत सुंदर कहा, और क्या विशेषता बताऊं। देखो ऐसे इसको समझ लो कि तुम किसी वाहन में जा रहे हो, और अचानक तुम रास्ते के किनारे से आवाज सुनते हो, ओ साहब, वो महाराज, मैं बड़ा भूखा हूं महाराज, 3 दिनों से मैंने कुछ अन्न ग्रहण नहीं किया है। तो तुम क्या करोगे? हाँ, तो मैं वाहन को रोक दूंगा और कहूंगा कि अरे ले, ये पैसा ले। और वह पूछे कहे कि महाराज मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अन्न चाहिए, मुझे रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं पैसा लेकर के क्या करूंगा, मुझे अन्न आप दीजिए। तो आप कहेंगे कैसा है, ठीक है, इसे ले ले, आ जा, मैं यहां देता हूं, या मेरे पास थोड़ी सी मिठाई है, खा ले। और जब आपने उसे पुकारा तो जो याचक है उसने अपने पैर पर का कपड़ा निकाल करके तुम्हें दिखा दिया, देखते हो कि वह तो पंगु है, उसके दोनों पैर नहीं हैं। और वह कहता हो कि महाराज आप बुला तो रहे हैं पर आपके पास मैं कैसे जाऊं, तब आप क्या करोगे? कहा फिर वाहन से उतरूंगा और मिठाई का पुड़िया उसका पूरा लेकर के जाऊंगा और कहूंगा ले ले या ले ले तू। तुलसी ने कहा जब तुम उसे देने लगे, उससे कहने लगे ले, हाथ बढ़ा, उसने ऊपर का कपड़ा गिरा दिया, तो तुमने देखा कि वह लूला है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, और वह कह रहा है मैं 3 दिन का भूखा हूं, मुझे जरा खिला दो, तब क्या करोगे? हाँ भाई, तब तो फिर मैं खिला ही दूंगा। तो बस यही मेरा दीनता का घाट है। मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने कहा तुलसी आ जाओ, तो मैंने कहा प्रभु मेरे पैर तो है नहीं, मैं कैसे तुम तक चल करके आऊंगा? तो प्रभु मुझ तक आए, ले तुलसी ले, हाथ बढ़। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं लूला हूं, मैं लूला हूं, तुमने लूला मुझे बनाया, मैं ले भी नहीं सकता हूं। तो प्रभु ने तब मुझे अपनी गोद में लेकर के मुझे स्वयं खिलाया। कि दीनता का घाट है, दीनता के घाट में मनुष्य बिल्कुल ऐसा दीन ही मानता है, मैं न तो चलने में समर्थ हूं प्रभु, यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास जा नहीं सकता, यदि तुम मुझे देना चाहो तो मैं ले नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, तुम्हें ही मुझे गोद में लेकर के जो देना हो, तृप्ति देनी हो, देनी होगी। तो दीनता के घाट में ऐसा होता है। वाह तुलसी जी, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा और थोड़ा सा सुना दीजिए, अब तो आपकी कथा में रस आ रहा है। अच्छा सुनो, देखो और दीनता के घाट का मतलब क्या है जानते हो? मैंने बुलाया प्रभु को, तो प्रभु ने तो पहले पूछा कि तुलसी क्यों बुलाते हो? तो कहा महाराज तुमको बुलाते हैं लोग, नहीं जानते हो? कहा तुलसी मुख से कहो ना कि क्यों बुलाते हो? कहा महाराज हमें तो माया की डोर से तुमने बांध के रखा है, त्रिगुण की डोरी से तुमने बांध रखा है, और जीव इस बंधन से मुक्त होना चाहता है, इसीलिए तो तुमको पुकारता है, तुमने हमें भी डोरी से बांध करके रखा है, हम तुम्हें पुकार रहे हैं, आओ और इस बंधन से हमारा छुटकारा कर दो। वाह तुलसी, उपदेश तो बहुत देते हो दूसरों को, अपने जीवन में अमल में क्या नहीं, क्यों नहीं लाते? तुलसी ने कहा महाराज मैंने कौन सा उपदेश दिया? क्यों, तुम्हें तो कहा है जासु नाम जप सुनहु भवानी भव बंधन काटहिं नर ज्ञानी। तुम्हें तो लिखा है कि जिसका नाम सुनकर के हे भवानी, ज्ञानी नर भवबंधन काट लेता है। दूसरों को रास्ता सिखाते हो, तुम्हें रास्ता नहीं सूझता, मुझे बुलाते हो।